پیش خدمت ہے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی, پیشکش یاسمین جمیل.
السلام علیکم, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی لے کر یاسمین جمیل حاضر ہے. پاکستان میں ریڈیو پر براہ راست میڈیا ویب 972 پر, انٹرنیٹ پر وائس آف امریکہ کی اردو کی ویب سائٹ urduvoa.com پر, اور فیس بک پر ان لنکس پر facebook.com/hardamrawahizindagi اور facebook.com/yasmeenjameelvoaurdu. ان لنکس پر اس پروگرام کو اس وقت براہ راست سننے کے بعد آپ اس پروگرام کی ریکارڈنگ انہی لنکس کے ذریعے کسی بھی وقت سن بھی سکیں گے, شیئر بھی کر سکیں گے اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں گے. پروگرام کے دوران ہمارے مہمانوں سے سوال پوچھنے کے لیے مفت کال کا ہمارا نمبر ہوتا ہے 0800-777-89. تو لیجیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں.
I have been working for Aveda for last 10 years. Now I have opened my own studio, Leela Studio. I provide professional services that will make you feel at home.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں ہماری آج کی مہمان ہیں میک اپ اور ہیئر اسٹائلنگ کی ایک ماہر اور کاروباری دنیا میں آگے بڑھتی ہوئی ایک پاکستانی امریکی خاتون امبر نجم, جو یہاں امریکی ریاست ورجینیا میں ایک بیوٹی اور ہیئر سیلون بڑی کامیابی سے چلا رہی ہیں. پاکستان کے صوبے بلوچستان سے تعلق رکھنے والی ہماری مہمان امبر نجم اپنے ہیئر اور بیوٹی سیلون لیلاز اسٹوڈیوز میں پاکستان کے روایتی اور جدید ملبوسات اور جیولری پیش کر کے اسے پاکستان کے روایتی اور جدید ثقافتی رنگوں کو امریکہ میں متعارف کرانے کا ایک ذریعہ بھی بنا رہی ہیں. ہماری مہمان کے تصویری تعارف اور اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/hardamrawahizindagi اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasmeenjameelvoaurdu. ہماری مہمان امبر نجم اس وقت موجود ہیں امریکی ریاست ورجینیا سے ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ. السلام علیکم امبر نجم صاحبہ.
السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟
میں ٹھیک ہوں اور آپ کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی کے سننے والوں کے لیے اپنے بہت ہی قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالنے کا. آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں, کچھ بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ بلوچستان کے ایک روایتی گھرانے کی ایک خاتون کے لیے یہ کیسے ممکن ہوا کہ وہ یہاں امریکہ میں بزنس کی دنیا میں اور خاص طور پر میک اپ اور ہیئر اسٹائلنگ کے بزنس میں نہ صرف قدم رکھے بلکہ خوب جما کر قدم رکھے اور اسے اتنا کامیاب بزنس بنا دے کہ پاکستان اور جنوبی ایشیا کی فن کی دنیا کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے دوسرے شعبوں کی مشہور شخصیات بھی اس کی سروسز سے استفادہ کرنے لگیں؟ تو کچھ شیئر کریں اپنی کہانی ہمارے سننے والوں سے.
ہاں جی ضرور. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور تھینک یو سو مچ. بس یہ شروع ہو گیا کام, محنت کی بات ہوتی ہے اور وقت وقت کی بات ہوتی ہے. ایک ٹائم تھا جب نہیں کرتے تھے, اب ہے کام کر رہے ہیں اب. اور کام تو کام ہے, محنت کی بات ہے ساری. اور بس یہاں جب میں آئی اور میں نے شروع کیا اپنا کام, تو میں نے اویرا سیلون سے اسٹارٹ کیا اپنا کام اور وہاں پہ بس محنت کی اور اسکول بھی پھر وہی جوائن کیا. اس کے بعد شروع ہو گیا کام. اس کے بعد 12 سال تک میں کرتی رہی اویرا کے ساتھ کام. اس کے بعد جو تھا, کیونکہ میری بچی ہو گئی تو میں نے کہا مجھے اپنا اسٹوڈیو کھولنا چاہیے, کیونکہ یو نو آپ کو اپنے گھر کا بھی خیال کرنا ہے, فیملی کو بھی دیکھنا ہے.
لیکن اس کے لیے پہلے آپ نے باقاعدہ پڑھا, یعنی کہ بغیر
آپ کو پڑھنا پڑتا ہے, مطلب پڑھائی کے بغیر تو کوئی بھی چیز نہیں ہے نا, وہ بھی اسپیشلی امریکہ میں.
تو جب آپ پاکستان سے یہاں پر آئی تھیں تو آپ ایک یوگا کی انسٹرکٹر تھیں, لیکن یہاں آ کر آپ کو یہ چانس ملا کہ آپ میک اپ اور ہیئر اسٹائلنگ سیکھ سکیں, اور لیکن اس کے لیے پھر آپ نے باقاعدہ پہلے اس کی ایجوکیشن بھی حاصل کی, اس کی
ٹریننگ, لائسنس لینا ہوتا ہے, آپ کو اسکول جوائن کرنا پڑتا ہے, ایک سال کا ہوتا ہے وہ پورا. وہ آپ کو کام پہلے اسکول جا کے جب آپ کو لائسنس مل جاتا ہے دین یو کین اسٹارٹ ورک, لائک اب پھر آپ کر سکتے ہیں کام ایز اے اسٹائلسٹ.
اچھا, تو آپ نے پورا وہ ایک سال کا کورس جب کیا تو اس میں یہ سب چیزیں سیکھی جو اب آپ کے کام آ رہی ہیں؟
उसमें कॉस्मेटोलॉजी का होता है, उसमें मेकअप, हेयर, नेल, सारी चीजें होती हैं उसके अंदर, वो सारा आपको कुछ करना होता है। कुछ अवेदा स्कूल से किया, ग्राम रैप से किया, और इसी तरह मतलब सब कुछ करके फिर आप स्पेशलाइज, लाइक अगर आप हेयर करना चाहते हैं या मेकअप करना चाहते हैं, किस पे ज्यादा आपका जोर है, तो आई वॉज वेरी मच इन हेयर, तो मैंने कहा मैं आप यही करती हूँ पहले, तो वही किया। फिर मेकअप भी क्योंकि सीखा हुआ था, तो जब घर से काम स्टार्ट हुआ तो उसके साथ साथ ब्राइड्स का और यू नो जितनी वेडिंग्स वगैरह होती थी वो भी शुरू कर दिया मैंने काम।
तो पहले शुरू आपने अपने घर से ही किया, यानी वहां से तो छोड़ दिया फिर, और फिर अपने घर में जब बच्ची के बाद आपने घर में काम शुरू कर दिया।
फिर शुरू किया, फिर इसी तरह फिर जैसे अब यहाँ पे शोज होते हैं अपने, एग्जीबिशन वगैरह होती है, लोग कपड़े वगैरह रखते हैं और फिर जो उनके रह जाते हैं वो फिर हमारे स्टूडियो में आ जाते हैं, इसी तरह मतलब यू नो काम हमारा चल रहा है।
अच्छा, तो क्या इसमें यहाँ पर पाकिस्तानी अमेरिकी ख्वातीन के लिए और जो इमिग्रेंट ख्वातीन हैं उनके लिए ये जो बिज़नेस है मेकअप का और हेयर स्टाइलिंग का, वो शुरू करना बहुत आसान है? इसमें कितनी सरमायाकारी की ज़रूरत पड़ती है और क्या उसके लिए उन्हें लोन्स वगैरह मिल जाते हैं या फिर वो खुद अपनी इन्वेस्टमेंट करती हैं?
आसान तो कोई भी चीज़ नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ता है और आपको पढ़ना भी पड़ता है। कुछ लोग तो बस आजकल जैसा है कि यूट्यूब खोला सीखा और शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। आपको स्कूल ज्वाइन करना पड़ता है, आपको बकायदा सीखना पड़ता है हर चीज के लिए, हर चीज़ मेहनत है, ठीक है ना, हर कोई कर सकता है।
लेकिन इसके लिए लोन्स वगैरह यहाँ मिलने की सहूलत है?
लोन का है मतलब आप ले सकते हैं, बट वही बात हो जाती है जैसे आप मॉर्गेज का पे कर रहे होते हैं, आपको लोन जो है आपको लोन वापस भी करना है, तो इससे यू नो वो भी एक वो है मसला है। एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पर, जैसे कि अगर आप कोई स्कूल ज्वाइन करते हैं, जैसे कि ग्रैंड वेब है, फॉर्मेचर है, दूसरे स्कूल्स हैं, तो अगर आप जाके वहाँ पे उसको ज्वाइन करते हैं तो आपको ये नहीं है कि आपने 10,000 या $20,000 जो है आपने फॉरन दे दिए, आपको जब आपकी जॉब हो जाती है उसके बाद यू कैन पे मंथली। अब कुछ हमारे लोग ऐसे हैं जैसे हमारे बलोचिस्तान की लड़कियां या दूसरी जगह की लड़कियां जो लोग अपने बच्चियों को बाहर नहीं भेजना चाहते, वो बहुत आराम से ये चीजें कर सकते हैं घर में बैठ के, और यू नो आप वही बात आ जाती है सारी मेहनत की।
मेहनत की, और आप इस शोबे में पहले तो आपने मेहनत ये की कि उसको सीखा, ना सिर्फ सीखा बल्कि इसके लिए बाकायदा लाइसेंस लिया, और लाइसेंस लेकर जब ये शुरू किया तो अपने दिन रात इसमें वक्फ किए, लेकिन साथ साथ अपने घर को भी चला रही हैं और साथ साथ ये बिजनेस भी, और अभी तक बड़ा हो गया। कुछ बताइए कि किस लेवल का अब आपने इसको बना दिया है, कि कौन कौन सी हमने फेसबुक पर कुछ तस्वीर पोस्ट की कि आपके पास तो बहुत मशहूर शख्सियात भी आती हैं बाल बनवाने के लिए,
शोज वगैरह होते हैं उसमें मैं जाती हूँ काफी, जैसे शबाना घोषाल, पीजी जेंटा, और काफी लोग, काफी स्टार्स हैं जिनका किया है मैंने, और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि उन लोगों ने मुझे काबिल समझते हैं, बुला लेते हैं मुझे वो लोग।
अच्छा,
तो उनका भी काम होता रहता है साथ साथ ये है कि घर पे जैसे आपने कलर किया, हाईलाइट किया, हेयर कट किए, और यू नो फेस पॉलिशिंग होती है, और हमारे पास कपड़े भी हैं क्योंकि आप देख सकते हैं पाकिस्तानी कपड़े हमारे, और आजकल खुद से भी आए हुए हैं लाहौर के, जो कि बड़े जालिमाना हैं, बड़े मजेदार हैं।
अच्छा, तो ये सब चीजें साथ साथ आपके ये स्टूडियो जो आपने बना लिया इसमें इन सब चीजों को आप हाईलाइट करती हैं और पेश करती हैं। मर्द भी आते हैं यहाँ पर ज्यादातर?
मर्द आते हैं सैलून्स में, स्टूडियोज में, बट मैंने अपना वो चीज नहीं रखा हुआ है।
तो क्या इससे आप समझती हैं कि आपके बिजनेस में कोई कमी नहीं आ जाती? आपने स्कोप अपना दायरा कम कर लिया, महदूद कर लिया?
ऐसा कुछ नहीं है, बिजनेस तो आपका चलता रहता है ना, शादियां होती रहे, शोज होते रहे, और लोगों के बाल जो है वो सफेद होते रहे, हमारा बिजनेस चलता रहे।
अच्छा, सफेद बाल आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए बड़े अच्छे काम के हैं। तो लेकिन आपके क्या रेट्स, आप क्या करती हैं कि जब पाकिस्तानी अमरीकी खास तौर पर ख्वातीन आती हैं और जो दूसरी तारकीन वतन ख्वातीन आपके पास आती हैं, तो उनकी डिमांड्स क्या होती हैं आमतौर पर जब वो अपने बाल सेट करवाती हैं, तो क्या आपसे खास तौर पर पूछती हैं या तलब करती हैं?
मतलब किस चीज में आप,
मतलब किस तरह की हेयर स्टाइल वो प्रेफर करती हैं?
अच्छा, ज्यादातर यहाँ पे मेजॉरिटी जो पाकिस्तानी और इंडियन जितने भी हैं हमारी औरतें जो भी हैं, उनको एक ही वो ट्रैक पे चल रहे हैं काफी सालों से, जो कि उनको वही लॉन्ग नेल्स चाहिए, उनको वही सेम हेयर कट चाहिए जो कि अब मेरा सिग्नेचर हेयर कट बन गया वो, विच इज लाइक अब ये है कि कुछ शॉर्ट नेल्स मांग रहे होते हैं, मतलब हेयर कट्स में ऐसा होता है, और हाईलाइट जो है कुछ जो है वो बहुत सटल चाहते हैं, और कुछ लोग बहुत लाइक यू नो एश ब्लॉन्ड या कुछ इस तरह से, दे डोंट गो विद फैशन लाइक विद ट्रेंड. वो लोग चाहते हैं ज्यादातर लाइक वही जो एक चीज चलती आ रही है जो हमारे पाकिस्तान में है, जो हर जगह मतलब वही कट वही चीज चल रही है.
अच्छा, तो कोई फर्क नहीं है यहाँ पर जो पाकिस्तान
है. बेचारे कहते हैं, मुझे बोलते हैं कि कुछ डिफरेंट कर लें, जरूर करें भाई, इससे अच्छी और क्या बात है, आप अपने बालों को काटें, शॉर्ट करें, कोई डिफरेंट कट लें. बट एंड फिर यही होता है कि लेंथ यही रहनी चाहिए.
अच्छा, वो कोशिश करते हैं कि बाल जो हैं वो नजर आए जितने
नजर आए.
अच्छा, तो वो जो आपके पास ये जो इमिग्रेंट दूसरी खवातीन है दूसरे मुल्कों की दूसरी कम्युनिटीज की, वो कम्युनिकेट करती हैं आपसे अंग्रेजी जबान में और उस...
हाँ जी मेरे जितने भी मतलब मोस्टली मेरे 75% जो क्लाइंट्स हैं वो सारे गोरे हैं, वो इस वजह से क्योंकि मैं अवेरा में काम करती रही और वहाँ 12 साल काम किया, तो उन्होंने मुझे कुछ क्लाइंट्स ने मुझे फॉलो किया, तो वो अभी तक मेरे रेगुलर क्लाइंट्स हैं, वेरी यू नो लाइक वेरी लॉयल क्लाइंट्स. तो अब उनका तो फिर यही होता है ना, वो लोग चेंज चाहते हैं और उनका मैं करते रहती हूँ, उनको ज्यादा ब्लॉन्ड हाईलाइट्स चाहिए होती हैं, वो लोग फिर यू नो क्योंकि गोरे हैं उनका वही स्टाइल है. बट ये है कि वो तैयार होते हैं अपने डिफरेंट लुक के लिए.
अच्छा.
तो मजा आता है जरा काम करने में भी कि आप एक जैसी चीज नहीं कर रहे, यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट.
अच्छा, ये बताइए कि एक प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट के तौर पर कि हेयर स्टाइल का शख्सियत पर किस हद तक असर होता है, और जो लोग
बहुत फर्क पड़ता है, बहुत आपकी पूरी पर्सनालिटी जो है ना वो चेंज हो जाती है. कि कई दफा मतलब आप मैं भूल जाती हूँ अक्सर, मैं सोचती हूँ कि बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स लगाऊं, कई दफा इतना ज्यादा बिजी आप होते हो कि आपके दिमाग में नहीं रहता, निकल जाते हैं. बट अब मैं लगाना शुरू करूंगी दोबारा से वो पिक्चर्स कि आप खुद देखेंगे कि कितना फर्क है.
तो फिर वो लोग या वो खवातीन जो किसी हेयर स्टाइलिस्ट की सहूलत हासिल नहीं कर सकती, उनके लिए आप क्या कहेंगी, वो किस तरह अपने बालों को संवारे और किस तरह अपनी शख्सियत को जाजिब नजर बनाए?
भाई उनको भी ये चाहिए कि अपने हर दूसरे दिन जो है अपने बालों को शैम्पू कंडीशनर करके रखिए, हफ्ते में एक दफा ऑयलिंग करें, और खैर फिर भी उनको मतलब 5-6 वीक्स में एक दफा बालों की ट्रिम के लिए तो आना ही पड़ेगा ना. ट्रिमिंग तो जरूरी है ही है, लेकिन ये कि घर में वो कम से कम अपने जैसे छोटे मोटे ट्रीटमेंट्स होते हैं वो करते रहें, अगर उनको नहीं कहीं जाना, ये नहीं है कि एक एक हफ्ते तक उन्होंने सर नहीं धोया, यू नो. और ये सब कुछ उन पे डिपेंड करता है, लेकिन कर सकते हैं वो करना नहीं चाह रहे होते. लाइक वो बहुत अच्छे कपड़े पहनेंगे बट उनके बाल अगर आप देखें तो होता है कि भाई आप बालों पे भी कुछ कर लें,
बालों को भी कुछ करें, उसको भी तवज्जो दें. तो लेकिन मौसम जब तब्दील होता है तो उस वक्त हमने देखा, हमारे अपने तजर्बे में भी आया कि बहुत ज्यादा बाल गिरते हैं सर के. तो
ये एक, हाँ जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने. ये एक पता है क्या, ये जैसे मौसम चेंज होगा ना, जितने बाल आपके गिरते हैं उतने ही वापस आ जाते हैं, वो कोई बड़ी चीज नहीं है. ये हर जैसे कभी गर्मी आएगी एकदम आपके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे और फिर ठीक हो जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, और फिर जैसे सर्दी आएगी तो फिर ये एक है ये चीज.
लेकिन बाज लोग बिल्कुल महरूम हो जाते हैं बालों से.
वो अब कुछ तो लोगों का ये होता है कि इनहेरिटेड भी होता है, ठीक है, कुछ लोगों का एज का भी होता है, तो हम कुछ कह नहीं सकते. अब जैसे ग्रे बाल हैं, लोग कहते हैं बेचारी कुछ बच्चियां आती हैं, दे आर लाइक 24-25 years old एंड दे आर लाइक हम क्या करें हमारे बाल ग्रे हो गए. तो इट्स नॉट लाइक एज है उनकी, नहीं, वो असल में कई दफा ये होता है आप पढ़ रहे हैं, आपको बहुत स्ट्रेस है बच्चों को, राइट, उनके वजह से हो गया. कुछ लोग इनहेरिटेड हैं, 30% एज होती है कि भाई एज की वजह से आपके बाल जो हैं वो यू नो ग्रे हो गए.
आप क्या मशवरे देंगी कि वो अपने जो खवातीन चाहती हैं या जो मर्द चाहते हैं कि वो अपने सर के बालों को सेहतमंद रखें और उनको झड़ने से बचाएं और उनको काला रखें, स्याह रखें, बगैर खिजाब के, बगैर कलर के, हेयर कलर के, तो वो क्या करें?
तो है ना, वो तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ. अब ये तो अल्लाह की तरफ से है कि अगर ग्रे बाल आपके निकल आए तो निकल आए, आपको कलर तो करना ही है. कुछ लोग नहीं करते सॉल्ट एंड पेपर लाइक यू नो वैसे उसमें ही अच्छे लगते हैं वो इतने कि वो कहते हैं छोड़ो कौन करेगा. कुछ लोग जो है वो करते हैं, कुछ लोग बहुत रेगुलर करवाते हैं. बाकी ख्याल करने की जहाँ तक बात है वो ये है कि भाई आप अपने विटामिन लें, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, आप क्या खा पी रहे हैं, ऑयलिंग करें अपने बालों की, यू नो आप ख्याल करें. वही बात आ जाती है कि आपको 4-5 वीक्स के अंदर अंदर जो है बालों का ट्रिम करना बहुत जरूरी होता है। जैसे हमारे लोगों के माइंड में है कि नहीं, तो बाल हमने 4 वीक के बाद ट्रिम करवाए ना तो छोटे हो जाएंगे। नहीं, वो हेल्प करता है, ग्रो करते हैं आपके बाल। आप डेड एंड्स आप निकालोगे अपने बालों के, यू नो मेंटेन। अब एक घर है, आप उसको मेंटेन करेंगे तो आप घर वैसा रहेगा ना आपका।
अच्छा, तो ये एक जमाना था बहुत ज्यादा सरों में तेल लगाए जाते थे, अब ये रिवाज खत्म हो गया है, फैशन में नहीं रहा तेल लगाना तो।
नहीं, अब तो आपको पता है कि यहाँ अमेरिका में स्पेशली इफ यू गो टू अवेरा सैलून, आप वहाँ पे देखोगे कि वहाँ पे इतने ऑयल्स आ गए, जितने ऑयल्स हम अपने बचपन में यूज करते थे, लाइक नारियल का, कोकोनट ऑयल और आलमंड ऑयल, अपना जितने भी ये ऑयल्स हैं, ऑलिव ऑयल, अब वो सब वहाँ पे उनकी बकायदा ऑयल ट्रीटमेंट होता है।
अच्छा।
जिसका वो अच्छा खासा उस ऑयल ट्रीटमेंट का $75 चार्ज करते हैं वो, ठीक है।
तो ये बहुत जरूरी है कि खवातीन जो है वो वापस उस तरफ आए, तेल अपने सरों पर लगाएं और चले बाहर लगा कर ना निकलें तो कम से कम छुट्टी के दिन या
1 घंटे के लिए लगा के उसको शैम्पू कंडीशनर कर लें।
अच्छा,
ऑयलिंग तो जरूरी है ही है, वो तो आपको करना है क्योंकि आप हाईलाइट करते हो, कलर करते हो, आपके बाल डैमेज हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, यू नीड ऑयलिंग, यू नो।
तो आप ये कह रही कि जब हेयर कलर करते हैं तो बालों को नुकसान तो होता है ना?
ड्राई होते हैं, ड्राई हो जाते हैं, लेकिन कलर से नहीं, हाईलाइट से। आप ब्लीच यूज करेंगे तो ऑफकोर्स हो, तो फिर जैसे कोई क्लाइंट आ जाए, मेरे बालों को बिल्कुल चेंज कर दें, बिल्कुल ब्लॉन्ड कर दें, तो आप जब तक ब्लीच यूज नहीं करेंगे आप कैसे ब्लॉन्ड करेंगे उसको? तो जब आप ब्लीच यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके बाल ड्राई तो होंगे।
तो जब ड्राई होंगे तो झड़ेंगे, फिर उसके बाद
झड़ेंगे भी, बिल्कुल बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं फिर आपके बाल।
तो किस किस्म के हेयर कलर्स आप सजेस्ट करेंगे कि लोग इस्तेमाल करें, क्या चीज मद्देनजर रखें जब वो अपने बालों को रंगे? तो
आजकल अमोनिया फ्री कलर्स आए हुए हैं, लेकिन गो फॉर अमोनिया फ्री कलर्स, हर जगह मिलते हैं। अगर आप वेगमेंट्स पे चले जाओ, अच्छे सैलून पे चले जाओ, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे लाइक अवेडा के जितने कलर्स हैं, अब तो रेडकिन के भी कलर्स जो हैं वो काफी मतलब इस तरह हैं कि जो कि अमोनिया फ्री हैं। लेकिन बस यही बात है ना कि अगर आप लंच या डिनर पे जा सकते हैं, खर्चा कर सकते हैं, तो बालों के लिए क्यों नहीं कर सकते आप?
तो आपने जब ये हेयर स्टाइलिंग का बिजनेस शुरू किया था तो आपको उम्मीद थी कि ये बिजनेस आप इतना आगे तक ले जा सकेंगी?
मेरी पूरी थी, बिल्कुल। मेरा ये ड्रीम भी था कि मैं चाहती थी मेरा अच्छा नाम हो इस बिजनेस में, ये मेरी एक ख्वाहिश थी बहुत बड़ी, और अल्लाह ताला ने उसको पूरा किया।
लेकिन मसाइल तो पेश आए होंगे,
बहुत ज्यादा
मसाइल
थी बहुत।
नहीं, क्या मसाइल? खास तौर पर अगर कोई पाकिस्तानी अमरीकी खातून यहाँ पर कोई हेयर स्टाइलिंग का पार्लर खोलती है तो उसको क्या क्या मसाइल पेश आ सकते हैं?
अब देखिए, अब आप जब शुरू करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपके पास कोई भी गोरा आता है, ठीक है, अब जैसे मेरे पास, मेरा एक बहुत अच्छा एक कुछ छोटा सा मैं आपको सुनाती हूँ, एक स्टोरी है छोटी सी। अवेडा में मैं काम करती थी और क्या कहते हैं, कैलिफोर्निया से एक औरत मूव हो गई इधर यहाँ पर, वो फर्स्ट टाइम मेरे पास आई, और जब वो मेरे पास आई उसने मुझे देखा, उसने उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि आप कहाँ से हो? मैंने कहा आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। ओके, अच्छा अच्छा, शी वाज क्वाइट। तो उसने मुझे एक बात बोली कि मुझे ना डोंट टच मी एंड डोंट टॉक टू मी, एंड आई वाज लाइक, इसने मुझे क्या बोल दिया ये, यू नो। खैर, मैं छुप करके गई, बैक रूम में गई और जाके मैंने कलर मिक्स किया और उसको कलर लगा दिया और कर दिया, और मैंने उससे बिल्कुल बात नहीं की और वो चली गई। तो मैंने कहा अब ये मेरे पास नहीं आएगी नेक्स्ट टाइम। तो नेक्स्ट टाइम में फिर देखा तो मैंने उसे 4 वीक्स के बाद मेरे ही साथ अपॉइंटमेंट दोबारा से कर दी। तो कुछ गोरे ऐसे होते हैं जो हमारे बारे में जैसे वो सुनते हैं, या हम मुसलमान हैं या पाकिस्तान से हैं, तो यू नो थोड़ा उनमें एक वो चीज आ जाती है।
तो ये मसला यहाँ पेश आ जाता है कभी कभी,
आ जाता है
अक्सर नहीं, कभी कभी।
लेकिन जब आप जरा मिलते हैं, बात करते हैं, तो फिर उनको पता चलता है कि यू नो लाइक एवरीबॉडी इज नॉट लाइक, हम इंसान है भैया आप लोगों की तरह। और वो मेरे पास फिर 5 साल तक आती रही जब तक उसकी यहाँ पे जॉब थी।
तो उसकी वजह आपका वो हुनर था जो उसको बालों को खूबसूरत बना देता था और जो उसको बार बार आपके पास लेकर आता रहा।
बिल्कुल बिल्कुल।
तो बेहद शुक्रिया अंबर नजम, हमारी गुफ्तगू भी जारी है। सर के बालों की बात हमने की, हेयर स्टाइलिंग की बात हमने की, अब हम चेहरे की जिल्द के बारे में भी बात करेंगे, मेकअप की भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन के प्रोग्राम हरदम रवां है जिंदगी में हमारी आज की मेहमान हैं मेकअप और हेयर स्टाइलिंग की एक माहिर और कारोबारी दुनिया में आगे बढ़ती हुई एक पाकिस्तानी अमरीकी खातून अंबर नजम, जो यहाँ अमरीकी रियासत वर्जीनिया में एक ब्यूटी और हेयर सैलून बड़ी कामयाबी से चला रही हैं। पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली हमारी मेहमान अंबर नजम अपने हेयर और ब्यूटी सैलून लैलाज स्टूडियोज में पाकिस्तान के रिवायती और जदीद मलबूसात और ज्वेलरी पेश करके इसे पाकिस्तान के रिवायती और जदीद सकाफती रंगों को अमरीका में मुतारिफ कराने का एक जरिया भी बना रही हैं। हमारी मेहमान के तस्वीरी तारुफ और इस प्रोग्राम को हमारे फेसबुक पेजेस पर सुनने के लिए हमारे लिंक्स हैं facebook.com/hardamrawahaizindagi और हमारा दूसरा लिंक है facebook.com/yasminjameel.voaurdu। हमारी मेहमान अंबर नजम इस वक्त मौजूद हैं अमरीकी रियासत वर्जीनिया से टेलीफोन पर हमारे साथ। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अंबर नजम, हमारे सुनने वालों को और ख़ासतौर पर ख़वातीन को ये बताइए कि ख़वातीन को मेकअप किस उम्र में और किस हद तक करना चाहिए कि उनकी जिल्द पर उसका असर ना पड़े, और किन मौक़ों पर किस हद तक और किस तरह का मेकअप और स्टाइल आपकी शख्सियत को जाज़िब नज़र बना सकता है।
हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन।
दो तीन सवाल मैंने इकट्ठे कर दिए हैं।
हाँ जी, काफी सारे इकट्ठे कर दिए आपने। तो हम ऐसे शुरू करते हैं कि लाइक अब देखें, जैसे 13 इयर्स से मेरे ख्याल में सन ब्लॉक बच्चियों को या बच्चों को सबको लगाना शुरू कर देना चाहिए। धूप से काफी आपकी स्किन वो हो जाती है ना, खराब हो जाती है। वो एक आपके लिए बहुत अच्छा है। बहुत ज्यादा मेकअप इज नॉट गुड फॉर योर स्किन, क्योंकि आप जब लगाते ही रहते हैं हर वक्त, किसी को बच्चों को पता नहीं होता कि हम कौन सा फाउंडेशन लगा रहे हैं, कौन सी क्या चीज लगा रहे हैं। बस वो लगा लेते हैं कि बस हमारी स्किन अच्छी लग रही है और ये वो। खैर एनीवेज, बात ये है कि मेकअप जो है वो आपको करना तो पड़ता है। जैसे कि अगर आप जॉब पे जा रहे हैं या आपको करना है, आपको अच्छा लगना है, क्योंकि आपने 10 लोगों के सामने जाके खड़े होना है, तो यू वॉन्ट टू लुक गुड। बाकी ये है कि मेकअप अगर आप करते हैं तो फिर आपके पास क्लेंजर अच्छा होना चाहिए कि रात को आप उसको अच्छी तरह से अपने मेकअप को उतार के सोए। कुछ लोग जो हैं वो मेकअप के साथ ही सो जाते हैं, जो कि स्किन आपकी काफी खराब हो जाती है, फिर पिंपल्स हो जाते हैं, मास्क हो जाते हैं, ऑल दैट। तो ये है कि ख्याल करना पड़ता है कि आपका क्लेंजर अच्छा हो, मॉइस्चराइजर अच्छा हो। अच्छी स्किन रखने के लिए आपको पानी बहुत पीना है, और ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं।
और जो खवातीन हैं, आप ये समझती हैं कि मामूली मेकअप के साथ भी अपने आप को जाज़िब नज़र बना सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो खूब थोप ले मेकअप फिर ही।
नहीं, आप हल्का सा भी मेकअप करें, यू कैन लुक गुड। हल्का सा ब्रश ऑन लगा लिया आपने, थोड़ा लिप ग्लॉस लगा लिया, रीजनेबल लगना चाहिए आपको। अब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही हाथ मुंह धोया साबुन के साथ और आप बाहर आ गए, तो वो भी आपके लिए जरूरी है कि आपको थोड़ा बहुत जो है अपने आप को ठीक ठाक रखना चाहिए। थोड़ा हल्का ब्रश ऑन लगा लिया, कभी कभार आई लाइनर अगर आप लगाना चाहते हो वो भी आप लगा सकते हैं, लिप ग्लॉस लगा लें। थोड़ा सा ग्लो दे देता है स्किन को, योर लुक थोड़ा सॉफ्टनेस आ जाती है आपके फेस पे।
अच्छा, तो लेकिन उसके बाद जरूरी है कि आप उसे उतार भी लें जो मेकअप आपने
किया। बिल्कुल, रात को सोने से पहले आपको अपने फेस को क्लीन करके अच्छी तरह से और मॉइस्चराइजर लगा के आपको फिर मतलब रखना चाहिए।
अच्छा, आजकल एंटी एजिंग क्रीम जो होते हैं ना, जो उम्र को बढ़ने से, हाँ, चेहरे पर उनका असर ना आए उम्र का, वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, तो उनके इस्तेमाल के लिए क्या एहतियात करनी चाहिए और आए उनको करना चाहिए तो कब शुरू करना चाहिए उनको?
कर लेना 30s से मेरे ख्याल में स्टार्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि 30s से ऊपर जो है फिर आपको जरूरत होती है। मतलब 30s से कुछ लोग कहते नहीं अभी टू, मतलब बहुत ही जल्दी आपने कर लिया ये, उन्हें 30s द बेस्ट टाइम कि आपने अपना एंटी एजिंग क्रीम शुरू कर दी, आपने अपनी स्किन का ख्याल करना शुरू कर दिया। वंस अ मंथ जस्ट गो फॉर अ फेशियल, ऐसी छोटी मोटी चीजें आपको रखना चाहिए। स्किन को साफ रखना तो बहुत जरूरी है ना आपके लिए।
अच्छा।
अब कुछ लोग फाउंडेशन बहुत लगा लेते हैं और वो फिर नहीं, उसको नहीं वॉश नहीं करेंगे रात को।
अच्छा, तो ये बड़ा नुकसान
हो जाता है, फिर आपकी स्किन खराब होती है, फिर जल्दी आके रिंकल्स भी होंगे, लाइनें भी पड़ेंगी, फिर आपको जो लोग रात को बहुत देर तक जागते हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं है।
लेकिन जिन्होंने सारी उम्र एंटी एजिंग क्रीम ना लगाई हो वो अगर लगा लें तो फिर?
पर थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जाएगी स्किन पे, कोई इतना खास फर्क नहीं
फर्क
पड़ेगा।
नहीं पड़ेगा,
हाँ
ठीक
ऐसा कोई खास नहीं है कि कोई मैजिक नहीं है कि आपने 60 ईयर्स के आप हो गए और आपने एकदम से सोचा कि अब हम कुछ करना शुरू कर दें, तो ऐसा नहीं है कुछ भी,
ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा,
नहीं।
नींद का स्किन पर क्या असर पड़ता है? बास बच्चे क्या, आजकल तो बड़ा ट्रेंड है रातों को जागने का, बच्चियां बहुत जागती हैं रातों को, इंटरनेट पर भी
तो
होती
वो
हैं।
बस फिर उनके आज सर्जर्स होते हैं, उनकी स्किन ऐसे नहीं होती जैसे होने चाहिए। अब देखिए ना, पहले जो था वक्त, एक टाइम होता था, सब सोते थे टाइम पे, जागते थे टाइम पे, आपकी खुराक अच्छी थी, आप अच्छे खाने खाते थे, हेल्दी फूड होता था आपका। आप तो ये कि जो भी मिला, बर्गर खा लिए, वो सब चीजें आपकी स्किन को खराब कर रही होती हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, पानी आप सही तरह से नहीं पी रहे हैं, तो ये सब कुछ आपकी स्किन पे जा रहा होता है।
तो किस किस किस्म की गिज़ा जो है वो स्किन के लिए अच्छी है?
ऑयल ज्यादा नहीं हो आपके खाने में, ऑयल बहुत कम होना चाहिए, और मिर्चें बहुत ज्यादा नहीं खानी चाहिए, जैसे खूब डाल डाल के सॉस, सॉस एंड ऑल दैट, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। जितनी भी आप फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, दूध
और दूध दूध का
सबसे अच्छा
इस्तेमाल
है। दूध
कैसा रहता है स्किन के लिए?
का इस्तेमाल भी बहुत अच्छा है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि अगर आप 40-50 ईयर्स के हो गए और आप सोचें कि अब हम जी रोज एक चार दूध का पियेंगे, तो फिर वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
अच्छा,
शुरू से ये आदतें होनी चाहिए, शुरू से ये काफी, मतलब एक रूटीन होनी चाहिए इन सब चीजों के लिए।
वरना तो एकदम से आप शुरू करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा ना आपका, कैसे होगा कि आपने सारी जिंदगी तो ख्याल किया नहीं और फिर अब आके आप ख्याल करेंगे। ठीक
अच्छा, तो उस
है, थोड़ा 19-20 का फर्क होगा ऑफ कोर्स कि चलो भाई, लेकिन वो बात नहीं होगी जो कि आप अपनी, जब आप 30 ईयर्स के हो रहे हैं और आपने अपना ख्याल करना शुरू कर दिया है, तो वो फिर सही रहती है, आपकी स्किन कभी खराब नहीं होती है।
अच्छा,
जी
तो फेसबुक पर जब हमने आपकी तस्वीर और आपके बारे में इन्फॉर्मेशन पोस्ट की तो बहुत सारे लोगों ने तो बहुत सराहा, और पहले तो ये बताया, ये भी उन्होंने बहुत तारीफ़ की कि एक बलोची खातून है और उन्होंने इस शोबे में इतना नाम पैदा कर रही है यहाँ पर। और कुछ लोगों ने अपने मसाइल भी लिखे। मोहम्मद इरफान ने पूछा कि उनके चेहरे की जिल्द बहुत ऑयली है तो वो किस
जी
किस्म का फेस वॉश इस्तेमाल करें, और क्या कोई ऐसा फेस वॉश जी
पाकिस्तान
पाकिस्तान
से
में, वो
कहीं
कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मैं कौन सा।
ऐसा फेस वॉश लेना वो जिसके अंदर ऑयल नहीं हो, लिखा हुआ होता है उसके अंदर। अब
अच्छा
पाकिस्तान से मुझे वहां पता नहीं है कि वहां पे कौन कौन सा आजकल चल रहा है, लेकिन ये है कि वहां पे जो भी वो लें वो ऐसा लें जिसके ऊपर लिखा हुआ हो कि ऑयल नहीं है इसके अंदर,
अच्छा
तो ही
अच्छा
इज फाइन देन। और मतलब मुंह 2-3 दफा दिन में बार बार ठंडे पानी से वॉश करें फेस को, वो हेल्प करेगा उनको।
अच्छा इसी तरह मोहम्मद इसहाक साकी साहब ने लिखा था कि इनके चेहरे पर कील मुहासे थे जो एंटीबायोटिक से दूर तो हो गए, लेकिन अभी भी कभी कभी इनके जिस्म में कुछ हिस्सों में खुजली होती है और तो जिस्म के दूसरे
उसके
हिस्सों में।
लिए ही कैन, आई थिंक ही कैन गो टू द डॉक्टर, डॉक्टर बता सकता है ये सब चीज है
अच्छा,
ना, वो तो हम नहीं बता सकते।
ये आप
जी
इस तरह ऑनलाइन या इस तरह बगैर देखे आप नहीं कुछ सजेस्ट कर
नहीं,
सकते
तो
ना।
ऐसे तो आप कुछ नहीं कह सकते।
अच्छा,
जी
और डेरा गाजी खान के अदनान अहमद ने जो पूछा था उसका तो आप जवाब दे ही चुकी हैं कि इनके सर के बाल गिर रहे हैं तो ये क्या करें।
जी, ऑयलिंग करें, विटामिन्स खाएं। जी
हाँ,
जी
वाइटामिन्स खाएं तो कौन से वाइटामिन्स अमूमी तौर पर जिल्द के लिए?
मल्टी विटामिन की रोज से एक गोली ले लें, यू विल बी फाइन।
अच्छा,
जी
और
जी
वैसे जो स्किन के लिए वाइटामिन ई कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है।
हाँ, विटामिन ई बहुत अच्छा है स्किन के लिए। और पता है कि सबसे अच्छी चीज तो है कि लाइक दे ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, पानी जितना पिए, पानी इतनी अच्छी चीज है आपके स्किन के लिए कि आपको 3-4 दिन पिए और आपको देखेंगे फर्क अपने स्किन पे।
तो ये कुछ सवाल किए थे, लेकिन कुछ और भी सवाल बाकी हैं, लेकिन हम आपसे बाद में करेंगे।
जी जी
गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे ये चाहूँगी कि आप हमारे जो सुनने वाले हैं उनको ये बताएं कि मोटी मोटी चीज़ें क्या हैं, अगर वो चाहें कि अपने चेहरे की जिल्द को, अपनी शख्सियत को जाज़िब नज़र रखें तो वो क्या करें, किन किन चीज़ों पर वो अमल करें कि जब वो कहीं निकलें तो पता लगे कि कोई शख्सियत आ गई है महफिल में।
देखिए, दौलत से जो है ना आप खूबसूरत बनेंगे नहीं, सीधी सी बात है। अल्लाह ताला ने बनाया आपको, जो आप हैं वो आप हैं। थोड़ी सी चीजें जो कि हमारे मतलब मजहब में भी हैं, इस्लाम में भी हैं, अपने आप को साफ सुथरा रखें, साफ सुथरे कपड़े पहने। अगर आप बाहर निकलते हैं तो कम से कम अपने बालों को एक अच्छे तरीके से, चलो भाई अगर आप ब्लो ड्राई नहीं भी कर सकते हैं तो थोड़ा सा कोई लाइक अगर कर्ल्स हैं आपके बालों में, थोड़ा सा मूछ लगा के उसको थोड़ा सा आपने वो कर लिया, थोड़ा स्क्रंच कर लिया बालों को, कभी अगर स्ट्रेट बाल हैं तो आपने अच्छे तरीके से उसको ब्रश करके आपने अच्छे स्टाइल से बना लिए, बांध लिए अपने बालों को। अपने स्किन पे थोड़ा सा आपने फाउंडेशन हल्का सा लगा के, ब्लश ऑन लगा के, लिप ग्लॉस लगा के, यू नो आप अच्छे क्यों नहीं, मतलब ये सब कुछ आपके अपने हाथ में है।
और जब इंसान का चेहरा वो सही हो तो उसमें वो जो एतमाद उसकी शख्सियत में पैदा होता है वो उसकी शख्सियत को मेरा ख्याल है कि जाजिब नजर बनाने में किरदार अदा तो करता है ना।
बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। इसी तरह छोटा से छोटी सी वो एक है, अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको बता दूं। मेरे पास एक पाकिस्तान में एक क्लाइंट मेरे पास आई जब मैं योगा एरोबिक्स की क्लासेस कर करती थी, तो वो मेरे पास आई एंड शी स्टार्टेड क्राइंग, वो रोना शुरू हुई, रोती जाए। मैं क्या हुआ आपको, आप क्यों रो रही है? कह रही क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो मुझे मना करते हैं कि हमारे स्कूल नहीं आओ, मेरे हस्बैंड आज तक मुझे कभी लंच या डिनर पे बाहर नहीं लेके गए। अच्छा क्योंकि ऐसा क्या, क्योंकि मैं इस तरह हूँ, बेचारी जरा मोटी भी थी बहुत, और यू नो सांवला सा रंग उनका, बड़ी सिंपल लुकिंग, बहुत ही शादी थी वो। तो खैर उनका मैंने कोई मेरे साथ उनका रहा कोई एक साल का साथ था उनका और मेरा, और मैंने काफी अच्छा लूज किया, कोई 60-70 पाउंड लूज कर लिए उन्होंने। फिर हमने उनकी स्किन का पूरा फेशियल किया, ब्लीच किया, उनको कपड़े अच्छे लेके दिए, उनका हेयर कट किया, सब कुछ करके जब हमने कहा चले भी आज तो आप सेट हो गई, साल हो गया पूरा, इतना अच्छा आपने लूज किया। जब उनको तैयार करके उनके घर जब हमने भिजवाया तो आप बिलीव नहीं करेंगी कि नेक्स्ट डे जब वो आई हैं और उन्होंने मुझे जो दुआएं और जो प्यार किए ना रो के, वो मैं आज तक नहीं भूल सकती। कहती हैं अंबर तुम बिलीव नहीं करोगी कि मेरे बच्चे जो है ना वो मुझे कह रहे थे कि प्लीज मम्मा आपने हमारे स्कूल आना ही आना है। कहती मेरे मियाँ ने मुझे फर्स्ट टाइम कहा कि चलो मेरे साथ डिनर पे खाना खाने पाए।
अच्छा,
लेकिन तो आप देखिए कि इंसान कितनी चेंजेस आते हैं।
बिल्कुल, एक थोड़ा सा अपने आप पर तवज्जो देने की जरूरत है।
ख्याल करें तो आप में किसी, और हर कोई कर सकता है, ये नहीं है कि मैं हूँ कोई बड़ी चीज या कोई, हर हर इंसान कर सकता है। मेहनत और थोड़ा सा अपना ख्याल करना है आपने।
तो ये यही गुर है और यही आप लोगों का क्या कहना चाहिए कि आपकी बड़ी बात है कि आप वो फनकार हैं जो कि एक रॉ मटेरियल को या एक रॉ हालत में जो चीज़ होती है उसको इतना खूबसूरत बना देते हैं, इतना प्रेजेंटेबल बना देते हैं कि सब लोग वाह वाह कर उठते हैं और बाज़ औक़ात पहचानने से इनकार कर देते हैं।
बल्कि आप चेहरा देखते हैं ना क्लाइंट का जब शीशे में मुस्कुराता हुआ तो आपकी वसूलियत हो जाती है, पैसे तो बात की बात है, उसी वक्त आपका दिल खुश हो जाता है कि काम अच्छा हो गया,
काम अच्छा हो गया,
हमारा क्लाइंट खुश हो गया।
ये तो हो गई ना बात, आपने जो मेकअप है और हेयर स्टाइलिंग है इस पर आप काम कर रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपने अपने सैलून को एक जरिया बना दिया है प्रमोट करने के लिए पाकिस्तानी लिबास को, पाकिस्तानी कल्चर को, पाकिस्तानी खुशों को खास तौर पर। तो कुछ बताइए कि ये आपको ख्याल कैसे आया और कैसे आप
लाहौर में है, एक बंदी मतलब बच्ची है वो, उसे स्टार्ट की है, ये खुद से वो खुद बना रही है और भेज रही है यहाँ पर, और इसमें कोई मेरा कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, बस मेरी एक जगह है, इस जगह से अगर किसी को भी कोई फायदा होता है तो क्यों नहीं हो। तो ये है कि कपड़े भी भिजवाते हैं लोग, डिफरेंट जगह से आते हैं कपड़े, डिफरेंट डिजाइनर्स हैं और बस उनके कपड़े होते हैं यहाँ पे, वो क्लाइंट्स आते हैं जिसको जो पसंद आया उसने ले लिया, गोरे भी लेते हैं उनको भी अच्छे लगते हैं हमारे ड्रेसेस। तो ये चीज भी साथ साथ चल रही है अल्लाह का शुक्र है, और ज्वेलरी भी है हमारे पास।
हाँ,
वो भी, जी हाँ।
तो इस तरह आपने एक तरह से एक तो अपना बिजनेस भी आप कर रही हैं लेकिन साथ साथ आप पाकिस्तान की सकाफत को भी प्रमोट कर रही हैं अपने इसी।
बिल्कुल जी, पाकिस्तान को हम कैसे भूल सकते हैं, पाकिस्तान तो हमारे साथ है, दिल के अंदर है।
तो यही सवाल चित्राल से याकूब शाह ने पूछा था फेसबुक पर कि पाकिस्तानी कल्चर को बैरून मुल्क किस तरह प्रमोट किया जा सकता है। तो इसका एक आप तो अपने लेवल पर इस तरह कर सकती है लेकिन और आप क्या कहेंगी, किस तरह जो पाकिस्तानी बाहर के मुल्कों में बैठे हैं वो किस तरह और क्या अंदाज हो सकता है पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट करने का?
काफ़ी चीज़ें हैं हमारे पाकिस्तान की, बहुत चीज़ें हैं कि जो कि यहाँ पर अब आना भी शुरू हो गई हैं और लोगों के पास भी हैं, हमारे रैलियाँ बनती हैं, हमारे बलोची ड्रेसेस हैं, हमारे सिंध की जो रैलियाँ हैं वो मतलब वो तो बहुत ही मतलब लोग पागलों की तरह, यहाँ तक कि अब तो आप अगर यहाँ पे जाएं टारगेट या दूसरी शॉप में जाएं उसी को कॉपी किया अगर उन लोगों ने। और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, बिल्कुल हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं।
और इसमें आप समझते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत का भी कोई रोल हो सकता है?
अगर वो चाहें तो क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उनका साथ चाहिए होता है। हर चीज में, अगर वहां से कुछ सामान यहाँ आ रहे और यहाँ से सामान वहां जाना चाहते हैं तो वो हो नहीं सकता ना कुछ। और वहां से जो चीजें आ रही होती है, इतना ज्यादा कस्टम और इतना ज्यादा वो हो जाता है कि लोग सोचते हैं फिर हम इतना पैसा कैसे लगाएं।
तो बहरहाल अगर हुकूमत तवज्जो दे तो पाकिस्तान की जो दूसरी सनती चीज़ें हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, दूसरी सकाफती चीज़ें, उनका यहाँ पर बाहर की दुनिया में,
हमारे गांव में, इलाकों में औरतें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती हैं, उनका सामान यहाँ पे आ सकते हैं, वो हम कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं हम। अब ये है कि गवर्नमेंट अगर साथ दे और उन लोगों का भी कोई साथ दे तो फिर कुछ हो सकता है। ऐसे तो
लेकिन छोटे पैमाने पर जाहिर है कि अगर इंडिविजुअल्स चाहें तो अपना छोटा मोटा तो ये काम जारी रख सकते हैं, जैसा कि आपने किया हुआ है।
जरूरी नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा कोई शोरूम खोल लें या बहुत बड़ा कोई स्पा खोल लें, नहीं ये जरूरी नहीं है। आप एक छोटी से भी उससे काम से अपना काम, मेरा ये है कि आप छोटे से भी उससे अपना काम शुरू करें, आपकी मेहनत है, और जब लोग आपका अच्छा काम देखते हैं वो ये नहीं सोचते कि हम किसी एक मामूली से स्टूडियो पे बैठे हुए हैं या हम एक बहुत बड़े अवेडा के स्पा में बैठे हुए हैं।
तो ये तमाम चीजें,
सर्विस, आपकी चीजें, आपके सब कुछ काउंट करते हैं ना।
अच्छा, बेहद शुक्रिया अंबर नजम। एक बार फिर एक ब्रेक का वक्त हो गया तो एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।
अच्छा ठीक है।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन के प्रोग्राम हरदम रवां है जिंदगी में हमारी आज की मेहमान हैं मेकअप और हेयर स्टाइलिंग की एक माहिर और कारोबारी दुनिया में आगे बढ़ती हुई एक पाकिस्तानी अमरीकी खातून अंबर नजम, जो यहां अमरीकी रियासत वर्जीनिया में एक ब्यूटी और हेयर सैलून बड़ी कामयाबी से चला रही हैं। पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली हमारी मेहमान अंबर नजम अपने हेयर और ब्यूटी सैलून लैलाज स्टूडियोज में पाकिस्तान के रिवायती और जदीद मलबूसात और ज्वेलरी पेश करके इसे पाकिस्तान के रिवायती और जदीद सकाफती रंगों को अमेरिका में मुतारिफ कराने का एक जरिया भी बना रही हैं। हमारी मेहमान के तस्वीरी तारुफ और इस प्रोग्राम को हमारे फेसबुक पेजेस पर सुनने के लिए हमारे लिंक्स हैं facebook.com/hardamrawahaizindagi और हमारा दूसरा लिंक है facebook.com/yasminjameel.voaurdu। हमारी मेहमान अंबर नजम इस वक्त मौजूद हैं अमरीकी रियासत वर्जीनिया से टेलीफोन पर हमारे साथ। जी अंबर नजम, आप एक पाकिस्तानी अमरीकी बिजनेस वूमेन हैं और इसको हम छोटा कारोबार कहते हैं, और यहाँ अमेरिका में पाकिस्तानी अमरीकी ख़वातीन ज़रा कम कम ही बिज़नेस के शोबे में दिखाई देती हैं, लेकिन भारत और ज़िंदगी के दूसरे शोबों में इनकी तादाद मौजूद है। आजकल जबकि अमेरिका में तारीख की पहली खातून सदारती उम्मीदवार मैदान में मौजूद हैं जिनका ये कहना है कि वो छोटे कारोबारों को फ़रोग देंगी, तो पाकिस्तानी और तारकीन वतन ख़वातीन इस मंजरनामे को कैसे देख रही हैं और क्या वोट देने के हवाले से ये मंजरनामा उनकी सोच पर असरअंदाज हो रहा है? और हमने आपसे ये सवाल इसलिए किया कि आपका क्योंकि ख़वातीन से रابطہ रहता है और हर कम्युनिटी की खातून आपके पास आती है, तो क्या आप देख रही हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं, उनके क्या तासुरात हैं इस वक्त?
हाँ जी, मेरे पास जैसे कि हर तरह के लोग आते हैं और हर कोई उनको वोट देने के लिए तैयार है और सब यही सोच रहे हैं कि औरतों के लिए बहुत अच्छा होगा, स्पेशली स्मॉल बिजनेस जो लोग अपनी जैसे हम लोग करते हैं, सब छोटे छोटे काम कर रहे हैं, उनके लिए लोन लेने के लिए बहुत इजी होगा, काफी चीजें आसान हो जाएंगी हम लोग औरतों के लिए स्पेशली। तो अब देखें, कोशिश तो सबकी यही है, वोट भी इसीलिए सब लोग देना चाह रहे हैं, अब आगे क्या होता है ऊपर वाले को पता है। लेट्स सी।
लेकिन उनका वो ये समझती हैं कि अगर कोई खातून सदर अमेरिका की बन गई तो उससे खवातीन की ओवरऑल सूरत हाल बेहतर होगी,
बहुत फायदा होगा जी, बहुत फायदा होगा, काफी चीजों में होगा, बिल्कुल।
अच्छा, ये उनकी सोच है और ये उनके उसके वोट देने के प्रोसेस पर भी आप समझती हैं कि असरअंदाज हो सकती है?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। और तो, दे रहे हैं लोग, काफी लोग तो इस वजह से भी दे रहे हैं।
अच्छा, लेकिन आमतौर पर जो खवातीन आपके स्टूडियोज में आती हैं अपना फैशन के लिए, मेकअप कराने के लिए, बालों के बनवाने के लिए, उनसे जब आपकी इंटरेक्शन होती है तो ज्यादातर किन मौजूद पर आपकी इंटरेक्शन होती है, इलावा मेकअप और हेयर स्टाइलिंग के कुछ सियासी गुफ्तगू भी होती है कभी?
होती है, हर तरह की होती है लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं, जब हम अपना काम कर रहे होते हैं, उसमें हम पॉलिटिक्स और रिलीजन दो चीजों को नहीं लेकर आए, क्योंकि उसमें गोरे लोग भी हैं, इंडियंस भी हैं, हर तरह के लोग होते हैं ना, हर जगह के लोग होते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम पॉलिटिक्स और इन चीजों को बिजनेस में, यहाँ पे प्रोफेशनली वो अच्छा नहीं लगता कि आप इस टॉपिक पे आए, तो इसलिए अगर कोई आता भी है तो हम उसको कोशिश करते हैं कि तरीके के साथ उस बात को खत्म करते हैं, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी एक वो है, हर किसी का अपना मजहब है, सब चीजें तो आपको रिस्पेक्ट करना पड़ता है।
अच्छा, तो उस वजह से फिर आप इन चीजों पर तवज्जो ज्यादा नहीं देती, फोकस करती हैं अपने
उस... ज्यादा हमारा टॉपिक जो होता है वो डाइट प्लान पे होता है, दूसरी चीजों पे, फैशन पे और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। और
अच्छा, हमारे पाकिस्तानी घरानों में बहुत सी ऐसी लड़कियां और ख्वातीन मौजूद हैं जो कुदरती तौर पर इस शोबे की सलाहियत रखती हैं, तो लेकिन ज़ाहिर है उनको मौाक़े नहीं मिलते, या तो जैसे कि माशरा उन्हें इजाज़त नहीं देता कि वो घर में इस शोबे को अपनाएं, ना बाहर निकलने देते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके अंदर टैलेंट भरा हुआ है लेकिन बेचारियों को उसका इजहार का मौका नहीं मिल रहा।
बस उनको बाहर निकलना चाहिए और अपना काम करना चाहिए और स्ट्रांग रहना चाहिए, करें वो मेहनत करें, चाहे घर पे बैठ के क्यों नहीं करें। बाहर नहीं निकल सकते हैं तो आप घर से बैठ के बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत
क्या...
सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप कर सकते हैं।
तो ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट के जरिए भी ये काम घर से शुरू हो सकता है अगर उनके अंदर ये हुनर मौजूद है।
बिल्कुल बिल्कुल, देखें आप जो है ना छोटी सी चीज से ही शुरू करते हैं और कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। आप जैसे मैक का मेकअप ले लें, आप ये दो नेबर्स थे जिन्होंने स्टार्ट किया था, वो फ्रेंड्स थी, ठीक है, तो उन्होंने घर से ही शुरू किया। इसी तरह अवेरा का कलर जो था वो भी घर से ही बंदे ने स्टार्ट किया था अपने बेसमेंट से, और वो कहाँ से कहाँ आज उसका नाम है कि आप लंदन चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ।
तो आप उनके उनको इस वक्त उन ख्वातीन को हौसला देंगी कि अगर आपके पास कोई हुनर है और आप समझती हैं मसलन बहुत अच्छा,
बिल्कुल वो करें, इस चीज में पीछे नहीं हटे, वो करें, घर पे बैठ के करें, कोई ऐसी बात नहीं है और कोई किसी चीज में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, काम करने में, मेहनत करने में किस बात का कॉम्प्लेक्स है। कुछ लोग जो हैं वो अपनी ईगो, उनका स्टाइल, उनका नाम, और वो बैठ जाते हैं, नहीं हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, यूं करेंगे तो वैसे, नहीं, मेहनत करें, करें जो दिल करता है वो काम करें, बाहर नहीं निकल सकते घर से शुरू करें।
तो ऐसे घरानों के जो दूसरे जो उनके खानदान के अफराद हैं उनको इस वक्त आप कुछ कहना चाहेंगी कि ऐसी बच्चियों को जिनमें ये टैलेंट मौजूद है,
बच्चियों को जो है ना उनको चाहिए कि उनको सिखाएं, जो बच्चियों को शौक है। मेरे पास अभी दो बच्चियां आजकल मैं उनको सिखा रही हूँ, अब उनके कॉलेज शुरू हो गए तो अब वो चली गई हैं, और उनको शौक था बट उनके ये था कि घर वाले नहीं पढ़ना है, सिर्फ नहीं हर चीज आनी चाहिए आपको, उनको मैंने सिखाया। अब उनके मतलब आगे जाके किसी वक्त भी आपके कोई भी चीज काम आ सकती है, क्योंकि कल तो किसी ने भी नहीं देखा अपना।
तो चित्राल से याकूब शाह ने फेसबुक पर आपके लिए यही सवाल पोस्ट किया था कि आप यहाँ पर दूसरी खवातीन की किस तरह मदद करती हैं, तो आप ये कहेंगी कि आप यहाँ पर दूसरी खवातीन को सिखाती भी हैं?
बिल्कुल, अगर मेरे पास कोई आता है और वो सीखना चाहता है मैं उनको सिखाती भी हूँ, और अब इंशाल्लाह ताला मैंने लास्ट ईयर भी दो लड़कियों को सिखाया है, और जो कि उनका मतलब इतना नहीं था, बेचारे नहीं कर सकते थे और पढ़ रही हैं वो बच्चियाँ, मेहनत कर रहे हैं वो लोग, पर ये है कि उनको मैंने कहा नहीं ये भी सीखना जरूरी है, उन्होंने सीखा माशाल्लाह बहुत अच्छा, दो तीन लड़कियाँ और हैं वो भी बहुत अच्छा सीख के गई हैं, और सब माशाल्लाह अपना अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
अच्छा, तो अगर मैं ये कहूँ कि आप अपने पाकिस्तान को क्या पे बैक कर रही हैं, तो फिर आपका जवाब क्या होगा?
पाकिस्तान को मैं देखिए ना यहाँ पे बैठ के काम कर रही हूँ और पाकिस्तान से हूँ, यही हो गया ना काफी,
पाकिस्तान का इमेज बेहतर बना रही हैं आप।
बिल्कुल जी,
पाकिस्तानी खातून का तासुर।
अब देखिए ना यहाँ गोरों में हम बता रहे हैं ना कि हम पाकिस्तानी जो हैं कितने अच्छे लोग हैं, हम मुसलमान कितने अच्छे हैं, हर कोई ऐसा नहीं है, हम उनकी खिदमत कर रहे हैं, उनसे प्यार से बात कर रहे हैं, उनको अच्छी सर्विस दे रहे हैं, ठीक है ना, तो ये चीजें बड़ी काउंट, छोटी छोटी चीज काउंट करती है ना लाइफ की, हर छोटी चीज।
तो यहाँ बैठकर आप एक तरह से पाकिस्तान की सफीर का काम कर रही हैं कि पाकिस्तान के तासुर को बेहतर बना रही हैं और पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट कर रही हैं अपने स्टूडियो के जरिए। जो
बहुत खुशी होती है जब मेरा कोई गोरा क्लाइंट आता है और वो कहते हैं कि भाई ये ड्रेस हमें चाहिए, कहाँ कहाँ का है, कैसे बना है, हैंडमेड है, पाकिस्तान से, यू नो यू फील प्राउड, और वो फिर लेके जाते हैं तो आपको खुशी होती है।
तो फैमिली मेंबर, अच्छा, यासिर अली ने चार सदा से पूछा था कि आपकी कामयाबी का राज क्या है?
मेहनत, अल्लाह का साथ है और उसके बाद मेहनत है।
तो शौहर कहाँ चले गए?
शौहर कहाँ चले गए।
हाँ, मेहनत मेहनत आप
शौहर
किए जा रही हैं, ये नहीं बता रही हैं कि भाई कितना कंट्रीब्यूशन है
भाई,
उनका।
बिल्कुल उनका साथ था तो यहाँ तक पहुंचे ना, ये तो मतलब
तो
जाहिर
क्या
है।
कहेंगे कि कितनी अहमियत है कि घर वाले जो हैं वो जब तक कोऑपरेट ना करें तो एक खातून
देखिए
बिजनेस
ना,
शुरू करे।
शौहर को अगर पका पकाया खाना मिल रहा है और
हाँ
उनके कपड़े तैयार उनको मिल रहे हैं, उनको हर चीज मिल रही है, ठीक है, वो क्यों किसी चीज में इंटरफेयर करेंगे।
नहीं,
वो
लेकिन फिर ये तो
खुश
तआवुन ना हुआ। अब आप तो उन्हें पका कर खाना दे रही हैं, तो फिर ये क्या तआवुन हुआ? वो पका कर आपको क्यों नहीं खिला रहे?
वो, हाँ ये बात बहुत अच्छी बोली। एक्चुअली हमारे पाकिस्तान के जो हमारे मर्द है ना, वो उनको आदत है कि उनकी खिदमत की जाए, तो हम वही, और मेरे अंदर भी वही चीज है आखिर बलोचिस्तान की, कि अपने मियाँ की खिदमत करनी है, वो अपनी जगह। फैमिली जो है ना, वो फैमिली कम्स फर्स्ट। अब मेरी बच्ची है जिसके लिए मैंने देखे स्टूडियो से काम शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को देखना है।
तो आप ये कह रही हैं कि जो पाकिस्तानी ख्वातीन यहाँ पर आ जाती हैं, चाहे वो पाकिस्तानी अमरीकी बन जाती हैं, चाहे वो अमरीका के कल्चर में रच बस जाती हैं, लेकिन वो अपने जो जो रिवायती चीज़ें हैं उनको साथ तो रखती हैं।
नहीं, उसको तो साथ रखना पड़ेगा ना, आपको ऐसी बात नहीं है। मेरे हस्बैंड मुझे हेल्प भी कर देते हैं काम में, और कभी कोई जैसे मेरा कोई शो है और मैं चाह रही हूँ कि मैंने अपनी बच्ची को साथ नहीं लेके जाना, तो वो उसका भी ख्याल कर लेते हैं। तो ये सब हेल्प उनकी भी मेरी भी एक साथ होती है, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं हम यहाँ आके भूल जाते हैं, तो हमें उसका भी ख्याल रखना है, अपने घर को भी देखना है और हर चीजों को साथ लेके चलना है।
तो आपने अपने घराने को पाकिस्तानी कल्चर में और अमेरिकी कल्चर के एक क्या एक, एक, एक क्या कहना चाहिए उसको, मिलाकर आप यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रही हैं।
बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल।
तो अब आइंदा आपका क्या इरादा है? आप अपने ये जो कारोबार है इसको किस हद तक तौसीह करेंगी, और क्या आपका यही ड्रीम था कि बस एक स्टूडियो बन जाए, या अभी आप और आगे कहाँ तक
नहीं
जाना
जी, अभी
चाहती हैं?
मेरे बहुत सारा है जी, अल्लाह का, अगर अल्लाह ताला का साथ होगा, इंशाल्लाह ताला, अगर उसने चाहा तो मेरी बहुत कोशिश है कि मैं इसको बड़ा करूं। अपने योगा एरोबिक्स की अपनी जो क्लासेस एक जमाने में होती थी वो भी मैं कर सकूं साथ साथ, तो अभी इसको मुझे आगे करना है। आहिस्ता आहिस्ता मैं कर रही हूँ, मेहनत अपनी, और बाकी वही बात आ जाती है, अगर अल्लाह का साथ होगा तो जैसे यहाँ तक पहुँचा है, आगे भी सब कुछ पूरा करेगा इंशाल्लाह।
पाकिस्तान की जो बलोची ख्वातीन आपको सुन रही हैं, उनको आप इस वक्त क्या कहना चाहेंगी कि भाई ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए वो क्या करें कि वो एक दिन आए कि वो भी आपकी तरह बड़े फ़ख्र से किसी मीडिया पर बैठी हुई इंटरव्यू दे रही हूँ?
उनसे मैं यही कहूंगी कि भाई सरदारों के और उनके नामों से बाहर निकलें और अपना नाम बनाएं बाहर निकल के, अपने लिए भी कुछ करें। बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग, ऐसी बात नहीं है,
बहुत कुछ कर सकते हैं।
बहुत कुछ कर सकते हैं बिल्कुल,
और उनके घर वालों के लिए कोई पैगाम?
कि उनको बाहर निकल के कुछ करने दें यही
आपकी बात वो क्यों मानेंगे? ऐसा
है।
आप
चलिए,
कोई उनको
कहने में कोई
इंसेंटिव दें
बुराई
ना?
नहीं है, कहने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना।
नहीं, कहने में बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन
हाँ जी,
शायद वो उनको इसका, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ कि
चलिए
उनको
ठीक
वो
है,
ये सोचें कि अगर वो अपने घर की ख्वातीन को आगे बढ़ाएंगे तो उसका अल्टीमेट फ़ायदा उनके घरानों को ही होगा,
बिल्कुल
उनके आने वाली नस्लों को होगा। एक पढ़ी लिखी और एक बाएतमाद और खुद एतमाद खातून जो है वो अपने घर को भी बहुत अच्छे तरीके से चलाती है, और अपने घर आने वाली नस्लों को जो है वो बहुत आगे तक लेकर जा सकती है। तो बिल्कुल
बिल्कुल
वही जो पुरानी मिसाल हम सुनते आ रहे हैं कि गाड़ी के पहिए हैं ना जी, अब वो सारे एक दोनों सब बराबर के पहिए
सब
होंगे
बराबर। हाँ
तो गाड़ी
बिल्कुल
ज़्यादा अच्छी
बिल्कुल
तरह से चलेगी ना।
बिल्कुल, आपने सही कहा, थैंक यू सो मच, आपने मेरा बड़ा अच्छा साथ दिया
अच्छा,
हाँ जी,
तो अब प्रोग्राम का वक्त तकरीबन अब ख़त्म होने को है,
हाँ
लेकिन
जी
मैं चाहूँगी कि अब आप अपने, हमने अभी तक जो गुफ्तगू की है उसका एक
जी
सम अप हम अपने सुनने वालों तक पेश करें कि अगर आप अपनी शख्सियत को जाजिब नज़र बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या कुछ करना चाहिए, अपने बालों के हिसाब से, अपनी जिल्द के हिसाब से, अपने चेहरे के हिसाब से, और अपने आप की एक सेहतमंद पर्सनैलिटी को प्रेजेंट करने के एतबार से।
सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि आप लोग अपनी, सब लोग अपनी डाइट को सही रखें, ये ऑयल वॉयल खाना कम कर दें तो आपकी स्किन वैसे ही बहुत अच्छी हो जाएगी, और बस अपना ख्याल करें, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि फेस को क्लीन से रखना, अच्छा क्लींजर यूज करें जो भी फेस फेस के लिए हो, मॉइस्चराइजर बहुत जरूरी है हर रोज लगाना वो बहुत, और साफ सुथरे रहें, अपने बालों को ट्रिम करवाते रहें, हाईलाइट करवाएं, कलर करवाएं, कुछ डिफरेंट लुक दें, आप अच्छे लगेंगे यू नो, और लोग आपको एडमायर करेंगे अगर आप अच्छे लग रहे हैं तो, बस अच्छे ड्रेसअप हों, रीजनेबल लगे इंसान।
और जिल्द के हिसाब से आपने कहा कि सफाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज है,
बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। रात को अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश करके मॉइस्चराइजर लगा के फिर जाके।
और किस उम्र से मेकअप शुरू करें?
मेकअप जो है शुरू कर लें चलें 17-18 ईयर से, आजकल बच्चियां शुरू कर देती हैं, विच इज ओके, बट वही बात आ जाती है कि बस साफ रखें अपनी स्किन को और बहुत ज्यादा टू मच नहीं करें शुरू, थोड़ा थोड़ा करें, आहिस्ता आहिस्ता ब्लश वन लगा लिया, लिप ग्लॉस लगा लिया।
और नींद?
नींद तो बहुत जरूरी है, 7-8 hours यू हैव टू स्लीप, अगर आप सोएंगे नहीं तो आपकी स्किन गई काम से, चाहे वो आप यंग एज पे हैं या फिर आप 50
कितने घंटे की नींद एक आम नौजवान को चाहिए होती है?
कम से कम 8 घंटे तो आपको सोना चाहिए ना, 8 घंटे की नींद तो बहुत जरूरी है। और यहाँ पे हमारे बच्चे जो है वो पढ़ाई और सब चीजों की वजह से मुश्किल से 3-4 घंटे सोते हैं, और फिर आदत भी हो गई भी है बच्चों को रात को जागने की, विच इज नॉट गुड, आपके अपनी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आपकी शक्ल के लिए, आपके बालों के लिए। जाहिर है जब आप नेक्स्ट डे भागम दौड़ी में जा रहे होंगे अपने काम पे, तो आपको उस वक्त ना अपने बालों का ख्याल होगा ना स्किन का ख्याल होगा।
तो प्लान करें अपने तमाम जो शेड्यूल
है, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपने 9 बजे काम पे पहुंचना है तो सुबह 6 बजे आप उठ के अपना ख्याल करें, अपना नाश्ता करें जो कि बहुत जरूरी होता है आपके लिए, पानी पिए बहुत, लाइक पूरे दिन में 12-13 ग्लास पानी के होने चाहिए, और ये सब चीजें काउंट करती हैं, आपकी डाइट बहुत काउंट करती है।
और जरूरत पड़े तो विटामिंस खाएं,
विटामिंस खाएं, और क्या कहते हैं वंस अ मंथ फेशियल करवाएं। लंच नहीं करें ना, एक दिन आप बाहर जाके फ्रेंड्स के साथ लंच नहीं करें, वो पैसे संभालें और जाके एक फेशियल करवा के आए।
अच्छा, पैसे अपने, अच्छा, और खासतौर पर जो सबसे असल चीज है वो ये कि अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाएं।
बिल्कुल,
जो बिल्कुल, हुनर बिल्कुल, उनको आता है उसको इस्तेमाल में लाएं।
बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल।
तो ये तो सारी बातें हुई, और हमें तवक्कु है कि आपने जो कुछ हमारे सुनने वालों को बताया, ख़ासतौर पर वो ख़वातीन जो हमें सुन रही हैं, वो यकीनन आपकी इन मुफीद बातों पर अमल करेंगी और अपनी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त भी लाएंगी, अपनी सेहत का भी ख्याल रखेंगी, अपनी खुराक का ख्याल रखेंगी, अपने चेहरे का ख्याल रखेंगी, अपनी शख्सियत का ख्याल रखेंगी, और ज़िंदगी में आप ही की तरह आगे बढ़ने के लिए राहें तलाश करती रहेंगी और उन पर चलने के लिए हर वक्त अपने आप को तैयार रखेंगी। बेहद शुक्रिया अंबर नजम, आपने हमारे प्रोग्राम हरदम रवायत सुनने वालों के लिए अपने बहुत ही कीमती वक्त से कुछ निकाला, आपका बेहद शुक्रिया अदा करते हुए आज का प्रोग्राम समेटते हैं। यास्मीन जमील को इजाजत दीजिए और सुनिए कि हमारी आज के प्रोग्राम की मेहमान कौन थी। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन के प्रोग्राम हरदम रवा है जिंदगी में हमारी आज की मेहमान थी मेकअप और हेयर स्टाइलिंग की एक माहिर और कारोबारी दुनिया में आगे बढ़ती हुई एक पाकिस्तानी अमरीकी खातून अंबर नजम, जो यहाँ अमरीकी रियासत वर्जीनिया में एक ब्यूटी और हेयर सैलून बड़ी कामयाबी से चला रही हैं। पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली हमारी मेहमान अंबर नजम अपने हेयर और ब्यूटी सैलून लैलाज स्टूडियोज में पाकिस्तान के रिवायती और जदीद मलबूसात और ज्वेलरी पेश करके इसे पाकिस्तान के रिवायती और जदीद सकाफती रंगों को अमेरिका में मुतारिफ कराने का एक जरिया भी बना रही हैं। हमारी मेहमान के तस्वीरी तारुफ और इस प्रोग्राम को हमारे फेसबुक पेजेस पर सुनने के लिए हमारे लिंक्स हैं facebook.com/hardamrawahezindagi और हमारा दूसरा लिंक है facebook.com/yasminjameel.voaurdu। हमारी मेहमान मौजूद थी यहाँ अमरीकी रियासत वर्जीनिया से टेलीफोन पर हमारे साथ। यास्मीन जमील को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।